वो भी विग्रह गति है। और विग्रह का तीसरा अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा। तो ये शरीर ही सबसे बड़ा झगड़े का कारण है, संसार में भटकन का जो कारण है वो शरीर है। तो फिर उस शरीर से छुड़ाई देते हैं भगवान, यानी जिस शरीर में भगवान का ध्यान किया है संसारी जीव ने, उसी शरीर को भगवान नष्ट करा देते हैं कि चलो भाई तुम्हारा झगड़ा समाप्त, अब आनंद से रहना मुक्ति में, अब कभी भी तुम्हें यहां आना नहीं पड़ेगा, वापस कभी लड़ाई नहीं होगी, ये मेरा दावा है। बोले भगवान लड़ाई खत्म करा देते हैं। एक बार पाठ कर लो, अंत सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम्। भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम्। एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि। यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः। मध्य विवर्ति, स्पोर्ट्स के जगत में मध्य विवर्ति कहते हैं रेफरी को। रेफरी उनको लड़ने नहीं देता, वो पॉइंट्स के हिसाब से चलता है, और फिर जैसे ही कोई ऐसी बात होती तो फिर सीटी बजाता जोर से, गलती हो रही तो सीटी बजाता, तो फिर उनकी लड़ाई नहीं हो पाती। एम्पायर है, रेफरी है, ये बिल्कुल विवाद नहीं होने देते, झगड़े को शांत कर देते। अब जैसे वो एक कह रहा है कि नहीं मैं आउट नहीं हूं, वो बोल रहा है कि आउट है, नहीं है आउट हूं, तो इसमें जगह रेफरी जो बोलेगा, एम्पायर जो बोलेगा, वो निर्णय हो जाएगा, फिर लड़ाई झगड़ा बंद। फिर बाद में दोनों हाथ मिलाते हैं, स्पोर्ट्समैन देखा ना आपने कभी, दोनों हाथ मिलाते हैं, फिर पहलवान हो तो गले मिलते हैं, झगड़ा खत्म। इसी प्रकार पार्श्वनाथ भगवान शरीर से मुक्त करा देते हैं, झगड़ा खत्म। इसके बाद वाले काव्य अपन फिर देखते हैं। अब 17वां काव्य है, आत्मा मनीषी भिरयम। आत्मा मनीषी भिरयन, अनुस्वार का उच्चारण न जैसा होगा। त्वद भेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत् प्रभावः। पानीयमप्यमृत मित्यनुचिन्त्यमानं किन्नाम नो विषविकारमपाकरोति। बढ़िया दृष्टांत है। आत्मा मनीषिभिरयन् त्वद भेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत् प्रभावः। पानीयमप प्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम्। किन्नामनो विषविकारमपाकरोति। आत्मा मनीषिभिरयन् त्वदभेदबुद्ध्या। ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत् प्रभावः। पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम्। किन्नामनो विषविकारमपाकरोति। जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, मनीषी भी यानी ज्ञानी जनों के द्वारा। मनीषी का अर्थ ज्ञानी होता है, साधु नहीं होता। बाकी बात तो वही निकलेगी कि ज्ञानी जन अयम आत्मा, इस आत्मा का तद अभेद बुद्धिया, आपसे अभेद बुद्धि पूर्वक, यानी आप अलग है और अपनी आत्मा अलग है ऐसा न मानते हुए, जो आत्मा है वो परमात्मा है ऐसा मानते हुए ध्यातः ध्यान लगाते हैं, यानी आत्मा को ही परमात्म रूप से ध्याते हैं ज्ञानी जन। और परिणाम क्या निकलता है? इह माने इसी जन्म में भवत प्रभाव भवती, उनकी आत्मा आपके समान प्रभावशाली बन जाती है, यानी वो आत्मा परमात्मा बन जाती है। यानी अपनी आत्मा का परमात्मा रूप में ध्यान करने पर अपनी आत्मा भी परमात्मा बन जाती है। दृष्टांत दे रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है, तो बोले अमृतम इति अनुचिंत्यमानं पानीयम्। अमृत है, अमृत है, अमृत है, ऐसा बार बार चिंतन करते जाओ तो पानी भी, किम विष विकारम नो अपाकरोति, क्या जहर के विकार को दूर नहीं करता? करता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई मरीज मानता ही नहीं कि आप दवाई दीजिए, कोई डॉक्टर बोला कि अब जरूरत नहीं है तुम्हें दवाई लेने की, तो बोले कि बहुत तकलीफ हो रही है, तो फिर डॉक्टर बोलता है कि अच्छा ठीक है चलो डिस्टिल वाटर दे देता है, डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगा देता है और उसको जो तकलीफ हो रही थी वो शांत कैसे शांत हो गई वो? क्योंकि उसके मन में ये बात बैठी हुई है कि ये जो डॉक्टर जो भी दवा देता है वो अमृत का काम करती है, वो भले पानी दे लेकिन पानी को भी अमृत मानने से वो दवाई का असर डालता है। इसी प्रकार अपनी आत्मा को भी परमात्मा के समान ध्यान में लाने पर अपनी आत्मा भी परमात्मा बन जाती है। शुद्धम तु वियाणंतो शुद्धम चेवप्यम लहदि जीवो, समयसार ग्रंथ में एक गाथा है, और जानंतो तु अशुद्धम अशुद्धमेव अप्यम लहदि। आत्मा को शुद्ध रूप ध्याने वाला, जानने वाला, पहचानने वाला शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। और जानंतो तु अशुद्धम, आत्मा को सर्वथा अशुद्ध जानने वाला अशुद्ध ही बना रहता है, उसको कभी शुद्ध की उपलब्धि नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो मनीषी ज्ञानी जन है वो हे जिनेन्द्र प्रभु, हे पार्श्वनाथ भगवान, अपनी आत्मा को आपके ही समान, यानि मेरी आत्मा ही पार्श्वनाथ भगवान है ऐसा ध्यान करते हैं वो अभेद बुद्धि से, यानि मुझ में और भगवान में कोई फर्क नहीं है ऐसा ध्यान लगाते हैं। ऐसा पूजा के समय नहीं बोलते, ये पूजा के समय ऐसा बोलना और ध्यान के समय ध्यान में नहीं बैठना यही तो मायाचारी है। यानी ध्यान की जब बारी आती है तब ध्यान नहीं करते, कभी देखा आपने ध्यान करते हुए? इतनी लंबी चौड़ी बात करना एक अलग बात है, और फिर वो बात करने वाले ध्यान क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ध्यान में मेहनत होती है, ध्यान में सुविधा छूट जाती है तो फिर कोई काम नहीं बनता। बोले कि ध्यान में आत्मा और परमात्मा को एक बना लो तो आत्मा परमात्मा बन जाएगी, और पूजा में अपने को भक्त और भगवान को भगवान रहने दो, क्योंकि बराबरी वाले की भक्ति नहीं हो सकती, ठीक है ना? बराबरी मतलब आप अपने आप को और भगवान को एक समान मान लोगे पूजा के समय तो समान मानने वाले क्लास फेलो के कभी चरण छूता है कोई? कहा था ना हमने एकदा कि अपने क्लास फेलो है कोई बिल्कुल दोनों थर्ड डिवीजन पढ़ने वाले, कोई एक दूसरे के चरण छूते हैं क्या? सवाल ही नहीं उठता। इसी प्रकार भक्ति के समय भगवान के गुणों का स्मरण करो, अपने अवगुणों को देखो कि मैं कहाँ और आप कहाँ, तब भक्ति होगी। और ध्यान के समय दोनों में जो समानता है उस पर ध्यान दो, निश्चय ने से दोनों सिद्ध भगवान भगवान रूप है। तो आत्मा को परमात्मा के रूप में ध्याने से आत्मा परमात्मा बनती है, जैसे पानी को अमृत समझने से विष का विकार या बीमारियां दूर हो जाती है, स्काईलैब पिल्स, आपको वो घटना मालूम है करीब कितने साल बीत गए, 70s की घटना है। अमेरिका ने कोई वायु अंतरिक्ष यान छोड़ा था स्काईलैब और वो गिरने वाला था, तब कितना तमाशा हुआ था। हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा प्रपंच हुआ था क्योंकि ऐसे समाचार थे कि वो हिंदुस्तान की तरफ आ रही है। अब भले ना आ रही हो लेकिन यहां खलबली मच गई लोगों ने जोक्स बनाए उसके ऊपर, स्काईलैब के ऊपर, कि एक व्यापारी ने पूछा कि आधा किलो का टुकड़ा गिरेगा क्या मेरे यहां, मेरी दुकान में वो आधा किलो वाला जो बाट था वो गुम गया बोले तो ऐसी दुनिया भर की बात है। और मुंबई में तो स्काईलैब पिल्स बिके हैं, कुछ ऐसी शक्कर की गोलियां बनाई लोगों ने और फिर बोले कि ये मंत्रित गोलियां हैं, इसको जो खाएगा उसके सिर पर नहीं गिरेगा बोले, तो ऐसी धड़ल्ले से बिकी है वो गोलियां, ऐसा नाटक हुआ है। तो कई ऐसी भी दवाइयां रहती हैं जो मान लेने पर असर कर जाती है। तो बस वही बात है कि आत्मा को परमात्मा मानकर अगर आप ध्यान करते हैं तो फिर आत्मा परमात्मा बन जाती है, असर तो है उसमें। ऐसा ही एक श्लोक इसमें आता है, एक ही भाव स्तोत्र में, प्रादुर्भूत स्थिरपद सुखत्वामनुध्यायतो मे त्वय्येवाहं स इति मतिरुत्पद्यते निर्विकल्पा मिथ्यैवेयम्। क्या यह है तो मिथ्या, आत्मा परमात्मा नहीं है। मिथ्यैवेयम् तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेश रूपाम् दोषात्मानोप्यभिमत फलास्त्वत्प्रसादाद् भवन्ति। बहुत सुंदर काव्य है। एक ही भाव स्तोत्र में ये 16 17वां काव्य है, ये 17वां काव्य है। वही हम नंबर याद कर रहे थे, आपने बता दिया, अच्छा हो गया। 17वां काव्य है और वादिराज मुनि ने एक ही भाव स्तोत्र लिखा है, बहुत सुंदर है। कल्याण मंदिर जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना, वैसे वादिराज मुनि का एक ही भाव स्तोत्र भी उसी प्रकार पढ़ने लायक है। यानी भक्तामर, कल्याण मंदिर, एक ही भाव स्तोत्र, तीनों एक से बढ़कर एक है, बहुत मजेदार है। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि जिनको स्थिर पद का सुख प्राप्त हो गया है, यानी हे भगवान आप तो मोक्ष चले गए लेकिन आपका मैं बार बार ध्यान करता रहता हूं, और ध्यान करते करते मैं, मेरे अंदर ऐसी भावना होती है कि आप में मैं ही हूं, आप और मैं एक ही हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। यद्यपि ये जो धारणा है मिथ्यैवेयम्, झूठी है, लेकिन तो भी अभ्रेश रूपाम तृप्तिम तनुते, वो अविनाशी तृप्ति को उत्पन्न करने वाली धारणा है। सही बात है कि दोषात्मानोप्यभिमत फलास्त्वत् प्रसादात् भवन्ति, आपकी कृपा से दोषी जन भी, देखो दोषी इसमें षटकोण का श है और हुम्मड़ जाति में जो दोषी शब्द है उसमें शक्कर का श है, शीतलनाथ भगवान का, इसलिए वो उच्चारण पर थोड़ा सा आप लोग, हम बार बार इसीलिए टोकते रहते हैं कि भाई उच्चारणों में गलती मत करो, दोषी को दोषी बना दोगे तो कबाड़ा हो जाएगा, फिर वो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो एक शक्कर वहां पर दोषात्मानो षटकोण वाला है कि दोषी जन भी अभिमत फलास्त्वत् प्रसादात् भवन्ति, आपकी कृपा से अभीष्ट फल को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। त्वामेव वीत तमसम परवादिनोपि, एक श्लोक और ले लेते हैं, एक काव्य, क्योंकि इसके आगे फिर प्रातिहार्यों का, 8 प्रातिहार्यों का बहुत सुंदर चित्रण है, उसके साथ स्तुति है। तो यहां पर त्वामेव वीत तमसम परवादिनोपि नूनम विभो हरिहरादि धिया प्रपन्नाः किंकाच कामलिभिरीश किंकाच कामलिभिरीश क क क, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। यमक किसको बोलते हैं? शब्द दो बार आता है या अधिक बार आता है लेकिन अर्थ एक नहीं होता, शब्द वही रहता है, अर्थ बदल जाते हैं, वो यमक है। और अनुप्रास में एक ही जैसा उच्चारण हो रहा है बार बार, किं काच कामलिभिरीश सितोपि शंखो नो गृह्यते विविध वर्ण विपर्ययेण। बहुत सुंदर काव्य है इसका भी। अब कोई भी असुंदर नहीं है, निकल जाता है मुंह से बार बार कि बहुत सुंदर है। त्वामेव वीततम संपरवादिनोपि नूनं विभो हरिहरादि धिया प्रपन्नाः किंकाच कामलिभिरीश सितोपि शंखो नो गृह्यते विविध वर्ण विपर्ययेण। त्वामेव वीततम संपरवादिनोपि नूनं विभो हरिहरादि धिया प्रपन्नाः किंकाच कामलिभिरीश सितोपि शंखो नो गृह्यते विविध वर्ण विपर्ययेण। हे विभो नूनम, मेरा तो ये मानना है, आचार्य कुमुदचंद स्वामी कह रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान से, हे प्रभु मेरा तो ये मानना है कि वीत तमसम अंधकार से रहित त्वाम आपको एव ही अंधकार रहित आपको ही परवादिनोपि हरिहरादि धिया प्रपन्ना, अन्य मति परवादी जो हैं वे भी हरिहर आदि की मान्यता से स्वीकार करते हैं। यानी कोई हरिहर पृथक से कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ही उन अन्य मतियों ने हरिहर नाम देकर के भगवान के रूप में स्वीकार किया है, आपको ही स्वीकार किया है। अब ऐसा क्यों किया, तो आचार्य कहते हैं कि हे ईश सितोपि शंखो, शंख सफेद है लेकिन सफेद होकर भी किम विविध वर्ण विपर्ययेण नो गृह्यते, क्या वो विविध वर्ण अनेक प्रकार के रंगों के विपर्यय अर्थात विपरीतता के साथ नो गृह्यते नहीं जाना जाता, कैसे जाना जाता है? तो काच कामली भी है, काच कामली का मतलब होता है रंगीन कांचों वाला चश्मा, उसको आप क्या बोलते हैं आज की भाषा में, गॉगल्स। गॉगल्स देखो ये कितने मतलब सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है, दृष्टांत जो दिया है आचार्य महाराज ने, तो इसका मतलब अपन सोचते हैं कि आज ही सब विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, पहले तो कुछ भी नहीं था, लोग चश्मा भी नहीं लगाते थे, कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये काच कामली का दृष्टांत कहां से आ गया, यानी रंग बिरंगे कांच पहले भी होते थे, तो उन कांच से अगर शंख को देखें तो क्या होता है, कभी हरा दिखता है शंख, कांच हरा हो तो, कभी पीला दिखता है, कभी लाल दिखता है, कभी नीला दिखता है, कभी काला दिखता है, अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो आवरण आ जाता है अपनी आस्था पर, तो आस्था का जो आवरण है वो भगवान का तो एक जो स्वरूप है 18 दोषों से वही है, लेकिन फिर भी वो उस आवरण के कारण अनेक रूप भगवान को मान लेते हैं। यानी आचार्य कुमुदचंद स्वामी कह रहे हैं कि हे पार्श्व प्रभु आपको ही लोगों ने हरि हर आदि अनेक रूप मान लिया है रंगीन चश्मों के कारण, नहीं तो आप ही हैं, लेकिन उन रंगीन चश्मों के कारण एक शंख जिस प्रकार रंग बिरंगा दिखता है उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी श्रद्धा के चश्मा को लगाने पर अलग अलग रूप से एक जो एक स्वरूप वाले जिनेन्द्र भगवान है वो भी अनेक रूप दिखाई देते हैं। वेदों में भी तीन तीर्थंकरों के नाम आज उपलब्ध है। नागपुर यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने एक ऋग्वेद बुलवाया था, बहुत बड़ा था, मतलब इतना बड़ा ग्रंथ होगा और इतना मोटा था। उसमें देखा तो फिर संभवतः 200 वर्ष पुरानी जो प्रति थी वेद की उसमें पूरे नाम रहे होंगे, लेकिन उसमें तीन नाम थे। ऋषभदेव भगवान का नाम था, आदि ब्रह्मा ऋषभदेव, और फिर एक नाम अजितनाथ भगवान का था, और तीसरा नाम अरिष्ट नेमी नेमीनाथ तीर्थंकर का था। तो तीन तीर्थंकरों के नाम वहां मिलते हैं, और आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान है, और फिर उन्हीं ने फिर ब्रह्मा का रूप जो है वो कुछ दूसरा ही बना दिया अपनी मान्यता के अनुसार, चतुर्मुख वाले। वैसे समवसरण में भगवान चतुर्मुखी दिखते हैं, चारों तरफ से देखो तो सब तरफ दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ कनेक्शन तो है, लेकिन वो चश्मे के कारण थोड़ा सा मान्यता में भेद पड़ गया है, मतांतर हो गए हैं। अब उसमें भी फिर अगर खींचातानी करो तो फिर मारपीट की स्थिति आ जाए, लड़ाई झगड़े की स्थिति आ जाए। इसलिए समझ लो सत्य जानने योग्य तो होता है, लेकिन समूचा सत्य बोलने योग्य नहीं होता। कुछ तो बोल सकते हैं आप सत्य, लेकिन पूरा अगर बोलने जाओगे ना तो यहां जी नहीं सकते। ये दुनिया इतनी टेढ़ी है कि पूरा सच बोल करके कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए बहुत सारा सच ऐसा है जिसको अपने अंदर रखो, जान लो, समझ लो और अपना काम निकालो, बस रास्ता पकड़ो, ऐसा है। इन दोनों काव्यों का एक बार उच्चारण कर लेते हैं। आत्मा मनीषिभिरयन्त्वदभेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत् प्रभावः। पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम् किन्नाम नो विषविकारमपाकरोति। त्वामेव वीततमसं पर्वादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादि धिया प्रपन्नाः। किंकाच कामलिभिरीश सितोपि शंखो नो गृह्यते विविध वर्ण विपर्ययेण। और अन्य मतों में एक वाक्य आपने सुना कि भगवान एक है, उनके रूप अनेक हैं। क्या मतलब निकला इसका बताओ? यही बात आ गई कि नहीं? और क्रियाओं में भी आप देखेंगे, अभी रात को हम सुन रहे थे कि वो लोग कुछ द्रव्य चढ़ा रहे थे। कौन से द्रव्य थे? अभी हम वो क्या है कि एकदम हमारा ध्यान कहीं दूसरी जगह था और अचानक कान में वो शब्द पड़े कि ये फलाना द्रव्य फलाना द्रव्य। हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे कि कौन से द्रव्य हैं वो, उनको देखना चाहते हैं हम, और रास गरबा वगैरह सब बातें वो अनाउंस कर रहे थे। ये सब बातें हम सुन रहे थे। हमने अभी एक इसी विहार में, इसी ग्रीष्मकालीन विहार में एक दिगंबर गरबा की पुस्तक प्राप्त की थी, और वो पुस्तक अभी यहाँ हिम्मतनगर में कोई हमसे ले गया पढ़ने के लिए। तो ये सब मूलतः ये सारी चीजें जो थी वो मूल परंपरा के अनुसार बहुत सारी चीजें थी, लेकिन ये सब परिवर्तित होते होते आज अन्य मतों की क्रियाएं बन गई है और वहां तक सीमित रह गई। जो अपनी क्रिया थी वो कई कुछ क्रियाएं अपने यहां से गायब हो गई। ऐसी भी कुछ क्रियाएं हैं जो अभी अपने यहां बिल्कुल लापता है, कहीं मिलने नहीं वाली। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अगर अपन पूरा थोड़ा अपने को दिल थोड़ा बड़ा करके देखना पड़ेगा। छोटी दृष्टि से आप देखोगे ना तो फिर आपको हर जगह मिथ्यात्व 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 दिखाई देगा। मिथ्यात्व है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन देखो तो सही कि उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। पहले क्या था, जब आदिनाथ भगवान थे तब 363 मत थे क्या, पहले ये सोचो आप। फिर ये जो 363 मत बने ये कहां से बने? तो सीधी सी बात है कि वो सब वहीं से निकली हुई शाखाएं हैं, लेकिन एकांतवादी हो जाने के कारण वो सब मिथ्यात्व की श्रेणी में चले गए, और अपन अनेकांतवादी होने के कारण अपन क्या बोले, अपन जो है सो, जो अनेकांतवादी है उसकी बात तो कर सकते हैं, तो वो फिर सम्यक कहलाते हैं। अनेकांत नय जो है सम्यक है, और एकांत नय जो है वो मिथ्या हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी है, जैसे चीन देश में जहां पर आदिनाथ भगवान की यंगटा गुफा में चरण है, एक चरण है यंगटा गुफा में और एक चरण बीजिंग में रखा है आदिनाथ भगवान का। अब वो चरण बनाए हुए इंद्र के हैं, इंद्र जो है जहां से मोक्ष जाते हैं भगवान, वहां पर ऐसे चरण चिन्ह बना देता है। मोक्ष कल्याणक की क्रियाओं के बाद एक ये भी एक क्रिया रहती है उसमें कि वो ऐसे चरण चिन्ह बना देता है। पार्श्वनाथ भगवान के चरण शिखर जी के ऊपर बनाए हुए, तो ऐसे जो चरण बने हैं तो आदिनाथ भगवान के चरण वहां पर है। अभी आप किसी को भी अष्टापद कहकर के आदिनाथ भगवान का मोक्ष स्थान मान लो, ये आपकी कल्पना आपकी खुशी, चलो उसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई विवाद की बात नहीं है, आपको जैसा करना हो करो। लेकिन जो असली स्थान है वहां देखो आप, तो वहां पर जो पूजा करने वाला चीनी पुजारी है वो, उसका जो मूल धर्म है वो बौद्ध धर्म है, लेकिन वो जो पूजा करता है उसको कोई मंत्र नहीं मालूम, अर्घ्यम निर्वपामीति वगैरह कुछ नहीं जानता वो, और अनर्घ्य पद प्राप्ति के लिए और ऐसा वैसा जल चंदन अक्षत कुछ भी नहीं मालूम उसको। लेकिन जब वो 8 पात्र में 8 चीजें रखता है, आप उसको देख लेना कि अभी वहां अगर कैलाश जाने मिले कभी आपको मौका पड़े तो वहां पर बहुत सारा मेडिकल चेकअप होता है, और बहुत तंदुरुस्त आदमी बहुत पुण्य के साथ वहां पहुंच सकता है उन चरणों तक। और बहुत कम लोग गए हैं वैसे, हर साल जाते हैं ट्रिप वहां पर कैलाश यात्रा पर। तो वहां यंगटा गुफा में चरणों की जो पूजा होती है उसको देख लेना आप, तो आपको पता चलेगा कि यही 8 द्रव्य। ये तो आप लोग तो यहां पर थोड़ा अपनी कन्वीनियंस के अनुसार द्रव्यों को बदल देते हैं, बादाम के बदले बादाम की गुठली चढ़ाते हैं, अभी चर्चा चली थी अपनी, असली बादाम कौन चढ़ाता है, ये जो चढ़ाया जाता है ये तो गुठली है। जैसे आम के ऊपर का सब निकाल लो आप और अंदर क्या बचता है, गुठली, वैसे बादाम के ऊपर का फल का जो भाग है वो भी खाने योग्य भक्ष्य होता है, उसको अलग कर दो, अंदर का जो बीज रह गया उसको अपन चढ़ाते हैं, और बादाम फल मान करके, क्योंकि लोक में उसको ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स अगर आम की गुठली को कहने लग जाए तो उसको भी आप फल मान करके चढ़ा लोगे, उसमें क्या बात है। तो यहां अपनी सुविधा के अनुसार आपने सब बदल अदल बदल कर लिया, लेकिन वहां पर वो जो पुजारी चढ़ाता है द्रव्य, वो वही 8 द्रव्य चढ़ाता है जो जैन आगम में पद्मनंदी पंचविंशतिका में जो शुद्ध द्रव्यों का वर्णन है, वो 8 द्रव्य वो पुजारी चढ़ाता है। अब बताओ वहां किसने किसको सिखाया, वहां कौन सा 13 पंथ और 20 पंथ आ गया। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा व्यापक दृष्टि रखो, और विश्व में कंबोडिया में जैन मंदिर है और भी कई जगह जैन मंदिर है, वहां के जो मूल निवासी है उनसे पूछो आप, यहां से जाकर किसी ने कुछ प्रदूषित कर दिया हो वातावरण उसको छोड़ दो आप, वहां के मूल निवासी कैसे पूजा करते थे ये आप पता लगाओ, अंततः यही पता चलेगा कि सब कुछ यहां से ही आया हुआ है। और सारे विश्व में जो मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 12वें समुल्लास में लिखा है कि मूर्ति पूजा जैनियों की देन है। अब बताओ हिंदुओं में भी जो मूर्ति पूजा का प्रचलन चला है वो वैदिक संस्कृति नहीं है, स्पष्ट लिखा उन्होंने उसमें। ये जो मूर्ति पूजा चली है, शंकर जी की मूर्ति और नारायण की मूर्ति, हनुमान की मूर्ति, राम की मूर्ति, ये सारी जो मूर्तियां हैं, मूर्तियों की पूजा का प्रचलन जैन मत से ही चला है, ये बात उनने लिखी है। ये जैन नहीं कह रहा कोई, कौन कह रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाजी, जो विरोध करते हुए लिख रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं उसमें, 12वें समुल्लास में जैन मत का खंडन कर रहे हैं वो, और खंडन करते हुए लिख रहा है कि इन जैनियों के कारण हमारे हिंदू धर्म में भी सब मूर्ति पूजा का प्रचलन हो गया। अब फिर ये यहां जैनी लोग क्या कहते हैं कि ये जो पूजा की पद्धति है इसमें ये सारे जो द्रव्य हैं, ये सारी जो विधियां हैं, ये सब ब्राह्मणों से आ गई, बोले यहां पर। अब देखो सोचने की बात है कि कौन सी चीज कहां से आई और कौन सी चीज कहां से गई। क्या है कि छोटी छोटी नजर से आप देख करके विचार करोगे और फिर सामने श्रोता भी अगर ऐसे ही हो मंद बुद्धि, तो भरपूर चलाओ अपना अपना मत, कौन किससे पूछने वाला है कि किससे कैसे क्या हुआ। लेकिन शोध करके देखो, आप पूरे साउथ के सब मंदिरों में जाकर के देखो, फॉरेन कंट्रीज के जो हिंदू मंदिर है या जैन मंदिर उनमें जाकर के देखो, रूस में 4000 साल पुराना रुद्र का मंदिर है, वहां जाकर के देखो क्या चढ़ाते हैं वो। और इधर उधर सब जगह खोज करो, ऐसा नहीं चलेगा कि मतलब हाँ नहीं हमारे यहाँ हमारे मोहल्ले में ऐसा है इसलिए हम ऐसा मानेंगे। ये कोई बुद्धिमानी नहीं हुई, ये कोई वैज्ञानिक दृष्टि भी नहीं हुई, ये तो फिर रूढ़िवाद हो गया। हमारे दादा ने खून किया था इसलिए हमारे पिता को भी खून करना पड़ा, क्योंकि परंपरा थी, इसलिए अब मुझे भी एक करना पड़ेगा जीवन में, इसको परंपरा कहते हैं क्या? अरे ये तो मिथ्या है, बिल्कुल कषाय वाली बात हो गई। परंपरा तो उसको कहते हैं कि जो निर्दोष परंपरा हो, जिनेंद्र भगवान के वचनों से जो प्रतिपादित है, गणधरों की परंपरा से, आचार्यों की परंपरा से जो चीज चली आई है वो साक्षात परंपरा है। बाकी बीच में किसी ने कुछ भी चालू कर दिया उसको अगर आप परंपरा मानते हो तो वो तो रूढ़ी मात्र है। वो आठ द्रव्य देख लेना कभी मौका पड़े तो, या कभी इंटरनेट से पता कर लेना, या कहीं चीन में अगर संपर्क हो जाए